फाइनली पार्टी का दिन आ गया था। आज रात को पार्टी थी। ज़ोया ने आज हल्की पिंक कलर का गाउन पहना था जो रहीम खान कहीं से किराए पर लाए थे। काफ़ी हल्का वर्क था उस गाउन पर, उनका ज़्यादा हैवी बजट नहीं था, बेहद सिंपल। सिंपल और हल्के गुलाबी रंग में ज़ोया बेहद खूबसूरत और आकर्षक दिख रही थी, और ऊपर से उसकी सादगी चार चांद लगा रही थी। और वो अंदर से बहुत नर्वस भी थी, क्योंकि ये उसकी लाइफ की पहली पार्टी थी। पार्टी उसकी हवेली में भी होती थी, पर बाहर के लोगों के सामने ज़ोया को आने की इजाज़त नहीं थी। पर आज तो उसको जाना ही था। वो वहाँ काम करती थी, मैनेजर ने सख्त इंस्ट्रक्शन दिए थे, किसी तरह की कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी। वेल, ज़ोया रेडी होकर होटल के लिए निकल गई थी। रहीम खान ने ज़ोया के लिए पड़ोस में रिक्शा चलाने वाले लड़के राजू को ही उसके लाने ले जाने की जिम्मेदारी दे रखी थी, क्योंकि ज़ोया किसी को जानती नहीं थी और उसको रास्तों का नहीं पता था। राजू उसको टाइम से ले जाता था और ले आता था, इसलिए उसको रास्तों की कोई चिंता नहीं थी। दूसरी ओर अरहम ने भी आज लाइट पिंक कोट पहना था। अनजाने में ही सही, दोनों के कलर मैच हो चुके थे। अरहम अब अरमान को माफ कर चुका था। वो ये जान चुका था कि इंसान बुरा नहीं होता है, वक्त और हालात उसको बुरा बनने पर मजबूर कर देते हैं। शाम को 8 बजे की पार्टी थी। अरहम जल्दी तैयार हो गया था, उसके पास अभी 1 घंटा बाकी था। इतने में उसने पुलिस को कॉल किया और ज़ोया और उसकी माँ के बारे में पूछा, पर उसको निराशा ही हाथ लगी। वो एक बार फिर उसकी यादों में घिर चुका था। ज़ोया टाइम से होटल पहुंच चुकी थी। उसने जैसे ही हॉल में कदम रखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो जगह उस टाइम उसको किसी जन्नत से कम नहीं लग रही थी। उसने आज तक इतनी खूबसूरत जगह नहीं देखी थी। हॉल को एकदम दुल्हन की तरह सजाया गया था। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सब ध्यान से देख रही थी। इतने में होटल मैनेजर अमन वहां तैयारियों का जायजा लेने आया और उसकी नज़र हल्के पिंक गाउन में खड़ी ज़ोया पर पड़ी और उसे देखता ही रह गया। अगर उस टाइम वो जगह जन्नत लग रही थी, तो ज़ोया भी किसी परी से कम नहीं लग रही थी। अमन टकटकी लगाकर उसे घूर रहा था, तभी वहां पर रश्मि आ गई। वो अमन को ज़ोया को घूरते हुए देख चुकी थी। वो गुस्से में ज़ोया के पास गई और बोली, तुम्हारी ये तांग छांग की आदत कब जाएगी? क्यों हर चीज़ को ऐसे देखती हो जैसे तुमने आज से पहले कभी देखी नहीं? यहीं खड़ी खड़ी सारा टाइम बर्बाद कर दोगी या अंदर चलकर कोई काम भी करोगी? ज़ोया झेप गई और हॉल क्रॉस करती हुई किचन में चली गई, जहां पर सब के सब नए नए तरह के पकवान बनाने में बिजी थे। आयशा ज़ोया को देखते ही चहक उठी और उसने उसकी जमकर तारीफ की। वेल, आयशा और ज़ोया जल्दी जल्दी काम खत्म करने लगी। ज़ोया ने बहुत जल्दी सब सीख लिया था। सभी मुलाजिम अपना अपना काम करने में व्यस्त थे। 2-3 लोग मिलकर केक तैयार कर रहे थे और उन्होंने बहुत खूबसूरत केक रेडी किया था। करीब करीब सभी काम कम्प्लीट हो गए थे, तभी अमन वहां आ गया और सारी तैयारी पूरी देखकर खुश हुआ। वो ज़ोया से बात करने की कोशिश करता है, पर कोई ना कोई बीच में कुछ ना कुछ बोल देता है या पूछ लेता है। तभी अमन कहता है, हेलो मिस शनाया, आज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूँ। आज की पार्टी में केक लेकर आप ही जाएंगी। ये सुनते ही ज़ोया कांप जाती है। उसने तो सोचा था कि किचन की खिड़की से पार्टी देखेगी, लेकिन अब तो उसे केक लेकर पार्टी में जाना था। वो मना करना चाहती थी, लेकिन बोली, सर मुझे तो अभी कुछ पता ही नहीं है, मैं कैसे जा सकती हूँ? रश्मि, जो कि सब सुन चुकी थी, बीच में ही ज़ोया को डांटते हुए बोली, हेलो मिस शनाया, हमने आपको ऑर्डर देने के लिए नहीं, हमारे ऑर्डर फॉलो करने को रखा है। रश्मि जानती थी ज़ोया नहीं है यहाँ पर और उससे कुछ ना कुछ गलती हो ही जाएगी। उसको बस उसकी एक गलती का इंतजार था ताकि वो उसको जॉब से निकलवा सके। बहरहाल कोई रास्ता ना देख ज़ोया ने हाँ कह दिया था। ज़ोया केक पार्टी में ले जाने के लिए मान गई थी। धीरे धीरे शाम हो चली थी और गेस्ट आना शुरू हो गए थे। हर एक गेस्ट का भव्य स्वागत हो रहा था। अरमान ठाकुर, जिनकी पार्टी थी, वो सबसे पहले अपनी पार्टी का जायजा लेने पहुंच चुके थे और वाकई पार्टी बहुत शानदार थी। वो होटल वालों से काफी इम्प्रेस हुआ था। बड़े बड़े मिनिस्टर, एक्टर, बिजनेसमैन, कमिश्नर, हर बड़े ओहदे का मालिक वहां मौजूद था। अरमान ठाकुर वहां सबके टॉपिक में थे, और होते भी क्यों ना, बहुत कम लोग इतनी कम उम्र में कामयाबी हासिल कर पाते हैं। वहां सब उन्हीं की बातें किए जा रहे थे, खासकर लड़कियां। वहां हर लड़की उनको अपने प्रिंस चार्मिंग के रूप में देख रही थी। आखिर इतना बड़ा बिजनेसमैन अभी तक कुमारा था। वेल, अरमान को बेसब्री से अरहम का इंतजार था, जो अभी तक पार्टी में नहीं पहुंच पाया था। दरअसल वो पार्टी के लिए निकल तो चुका था, तभी अचानक पुलिस का फोन आ जाने पर वो पुलिस स्टेशन चला जाता है। वहां पुलिस को 2 लावारिस औरतों की लाश मिलती है। वो आइडेंटिटी कराने के लिए अरहम को बुलाते हैं। अरहम कांपते हाथों के साथ डेड बॉडी देखता है और दूसरी ओर राहत की सांस लेता है। वो ज़ोया और उसकी अम्मी नहीं थे। वेल, वो पुलिस को इन्फॉर्म करके और ज़ोया को ढूंढने का कहकर पार्टी के लिए निकल जाता है। करीब करीब सब मेहमान आ जाते हैं। अरहम को ना आया देखकर अरमान निराश हो जाता है। अरमान की जो डील फाइनल होनी थी वो भी हो जाती है। वेल, अब केक कटिंग की तैयारी होती है। अरमान अमन को केक मंगवाने के लिए बोलता है। अमन रश्मि के थ्रू जोया तक मैसेज भिजवा देता है। रश्मि जोया के पास जाती है और सख्त लहजे में जोया को कोई गलती ना करने की वार्निंग देती है और अगले 5 मिनट में केक हॉल में ले आने को कहकर चली जाती है। जोया अंदर ही अंदर बहुत डर रही थी। वो इतने सब लोगों को कैसे फेस करेगी? उससे कुछ गलती हो गई तो? किसी ने कुछ कहा तो वो क्या करेगी? वो ये सब सोच ही रही होती है तभी वहाँ आयशा आ जाती है। वो जोया की उलझन अच्छे से समझती है। बहरहाल वो उसको समझाती है और कहती है, शनाया इतना क्यों डर रही हो? वो सब लोग भी इंसान है, कोई जानवर नहीं जो तुम्हें खा जाएंगे। बस तुम्हें 2 मिनट ही वहाँ रुकना है, केक देकर वापस आना है। बस 2 मिनट का काम है, तुम ज्यादा मत सोचो और परेशान तो बिल्कुल मत हो, ओके? जोया उसकी बातों से काफी हद तक शांत हो जाती है और वो भी यही सोचती है, 2 मिनट की ही तो बात है, उसे बस केक देकर ही तो आना है। वेल, वो खुद को रेडी कर लेती है और केक जो बेहद खूबसूरत था, केक ट्रॉली पे सजा हुआ बेहद शानदार दिख रहा था। आखिर होता भी क्यों ना, बर्थडे पार्टी में केक ही सबसे इम्पोर्टेंट था। वेल, जोया केक की ट्रॉली धकेलते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ती है। दूसरी ओर अरहम, जो की रास्ते में था, किसी भी पल पार्टी में पहुंचने वाला था। जोया पार्टी हॉल में चली गई थी, तभी अचानक। बाकी अगले भाग में।